Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Mamana Bhajana Shaktihi Padayoste Naraktihi न च विषय विरक्ति ध्यान योगेन शक्ति इति मनसि सदाहं चिंतयन् आद्यशक्ते रुचिरवचन पुष्पैः अर्चनं संचिनोमि वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॐ भद्रं नो अपिवातय मनः ओम शांति शांति शांति।
आप लोगों के पास है दस श्लोकी, कोई नहीं लाए, कल से लेके आए? हाँ है, मेरे पास है, पिछले साल सबके पास था, इस साल फिर करवा लो, फिर अगले साल फिर करवा लेंगे, ऐसे करवाते रहो। तो आज हम एक ही श्लोक बोलेंगे, कल सबके पास होगा, फिर दस श्लोक पूरा बोलेंगे।
न भूमिर्न तोयम् न तेजो न वायुर् न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धस्तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्।
ये करीब सब में एक जैसा ही आएगा, शिवः केवलोऽहम्। तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। इसी बात को सिद्ध करने के लिए इन दस श्लोकों के माध्यम से इस बात पर जोर दिया गया है। परब्रह्म परमात्मा के असीम अनुकंपा से लगातार 12 महीना 7.5 से 8.5, ये जो अखंड सत्संग का प्रवाह चल रहा है, जिसमें हम सब गोता लगाते हैं, भारत के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान शांकरी परंपरा के अनुसार, आचार्य शंकर के जो सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं अद्वैत वेदांत। सब लोग कहां पर हैं? बोले मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। और ऐसी जिज्ञासा का होना कि हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जाना है, ये सब भी भगवत कृपा से ही संभव होता है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। बंबई का नाम बोलते हैं ना संस्कृत में, क्या मोहमयी, ऐसे मोहमयी नगरी में भी विशेषता इसकी क्या है, जहां पर ज्ञान विज्ञान की चर्चा होती है। बंबई में जगह जगह सत्संग का आयोजन होता है, दैनिक सत्संग चल रहा है, उसमें प्रेमपुरी यह जो स्थान है अद्वितीय है। महाराज जी ने ऐसा कल्पवृक्ष लगाया जहां पर हम सब उसका लाभ उठा रहे। आचार्य शंकर के सिद्धांत के अनुसार परमात्मा से हम अलग नहीं हैं, इस बात का जो निश्चय हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं ज्ञान। सत्संग करने का प्रयोजन ही यह है कि जिस अज्ञान की वजह से बंधन की प्रतीति हो रही है, उसकी निवृत्ति कैसे हो। कल तक आप लोगों ने भागवत के 10वें स्कंद के माध्यम से सत्संग किया, अब करीब 20 दिनों तक दशश्लोकी के माध्यम से श्रवण करेंगे, उसके आगे फिर कोई दूसरा विषय होगा। घुमा फिरा करके बात तो वही है, एक जगह गुजरात में कहीं कोई नया व्यक्ति गया सत्संग में, सोचा ये बाबा लोग आते महात्मा लोग क्या बोलते जरा सुनूं। एक महीना दो महीना तीन महीना गया तो देखा एक ही बात सब बोल रहे। बोले मजा नहीं आया, हम तो सोचते सब अलग अलग बात करेंगे, सब एक ही बात कर रहे। तो अलग अलग बातें होगी तो फिर समस्या नहीं आएगी। बोले जो आते अपनी ढपली बजाते। यहां विषय के नाम अलग है, वक्ता बदल जाते हैं, सिद्धांत तो एक ही है। उसकी दृढ़ता के लिए, उसमें निष्ठा बने, उसी के लिए हमें प्रतिदिन सत्संग करना है। जो ज्ञान आपने जब सत्संग प्रारंभ किया उस समय हुआ और आज भी वही ज्ञान है, उसमें कोई बदलाव तो आया नहीं। ये मत समझना कि आपने जब शुरू में ज्ञान प्राप्त किया वो नया था और अभी पुराना हो गया। ज्ञान तो हमेशा नित्य स्वरूप है, उसमें नए और पुराने का व्यवहार नहीं हो सकता। तो जो नए लोग आते हैं ना, उनको ऐसा लगता है आप लोग यहां बैठते हो, श्रवण करते हो, एक घंटा अपना अमूल्य समय निकालकर, देखा जाए तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। यहां हम जितने भी बैठे हैं, प्रारब्ध के अनुसार संयोग बना, एक एक करके इस दुनिया में सब आए हुए हैं और ऐसे धीरे धीरे एक एक करके चले भी जाते हैं। यहां कोई नहीं जाने वाला है क्या? किसी के साथ कोई जाएगा नहीं, सबको पता है। इसी बात को सिद्ध करना है। यह जो एक है, मंगलाचरण के रूप में शिव का जो नाम आया, बोलते यही मंगल स्वरूप होने से मंगलाचरण हो गया। हालांकि इसके ऊपर मधुसूदन सरस्वती जी ने न्याय घटित सिद्धांत बिंदु की जो टीका लिखी है थोड़े कठिन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो हम लोगों के लिए आसानी हो उसके आधार पर विचार करें। सब में न न कह करके निषेध किया, न भूमि, न तोयम, न तेजो, न वायु, न खम। पांच भूत का नाम आता है, पंचदशी आजकल चल रहा है ना स्वाध्याय में। तो आगे तत्व विवेक प्रकरण के बाद आएगा पंचभूत विवेक प्रकरण। पांच भूतों के साथ विवेचन करके उस आत्म तत्व को कैसे सिद्ध करना है, ये पंचदशी में विस्तार से वर्णन किया है। पहले जो पंचभूत प्रक्रिया है क्या, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये स्वतंत्र रह करके कुछ भी नहीं कर पाते, और यही जब जुड़ जाते इनको जोड़ के रखने वाला कौन है, समय आने पर बिखेरने वाला कौन है। पृथ्वी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकती, जल के साथ मिल जाए तो उसमें कुछ करने की क्षमता आती है, लेकिन तेज का भी संयोग चाहिए, वायु भी चाहिए और आकाश भी चाहिए। यहां सबका निषेध किया। दशश्लोकी का प्रयोजन क्या है आप लोगों को कुछ याद होगा शायद, गत वर्ष ऐसा कहा था कि वेदांत शास्त्र श्रवणालसानाम, वेदांत शास्त्र में ब्रह्मसूत्र आदि जो कठिन ग्रंथ हैं, जिसका श्रवण मनन आदि करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जिज्ञासु हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते ऐसे लोगों के लिए ही मानो आचार्य ने कृपा करते हुए इन 10 श्लोकों की रचना की, इसलिए इसका नाम पड़ा दशश्लोकी। याद रहेगा ना, किस लिए आचार्य ने श्लोक लिखा? हाँ, जो कठिन ग्रंथ आदि हम नहीं पढ़ सकते, नहीं श्रवण कर सकते। अब आप लोग तो पढ़ते हो, श्रवण किए हुए हो, तो क्या दशश्लोकी नहीं सुनोगे? ऐसा तो नहीं है। परमात्मा का स्वरूप ही ऐसा है, जो भागवत में आया ना, जहां पर एक तरफ सुखदेव जी गर्भ से निकलते ही चल पड़ते हैं और व्यास जी बोलते पुत्री दितन्मयतया। अभी आजकल यहां लोक सिद्धांत कौमुदी भी चल रही है, व्याकरण की हिसाब लगाओ तो पुत्रः पुत्रौ पुत्राः, संस्कृत में जितने त्रांत शब्द है ना त्र वाला, सब नपुंसक लिंग चलता है, लेकिन मंत्र पुत्र इनको छोड़ करके मंत्र हमेशा पुलिंग होता है। मंत्र मंत्रो मंत्रा, पुत्र पुत्रो पुत्रा, और मित्र मित्रे मित्राणी होगा, वहां पर पुलिंग में नहीं चलेगा। कलत्रम कलत्रे कलत्राणी, पत्नी जो होती है ना, पत्नी को कलत्र बोलते हैं, उसके लिए भी नपुंसक लिंग चलेगा। अर्थ तो है पत्नी, और शब्द में जो रूप चलता है होता है कलत्रम कलत्रे कलत्राणी, मित्रम मित्रे मित्राणी। दारा, दारा शब्द जो है ना बहुवचन वाला है और पुलिंग में चलता है वो हमेशा। दारा दारान, बस एक ही चलेगा बहुवचन में। संस्कृत व्याकरण थोड़ा जानना बहुत अच्छा है। प्रेमपुरी में लोग बोले व्याकरण पढ़ रहे, बाप रे बाप, सब घबराएंगे। यहां केवल ऐसे हिंदी आदि बोल के काम नहीं चलेगा। कैलाश वाले महाराज जी जो संस्कृत में बोलते थे ना, उनका नियम था शायद 12 बजे तक संस्कृत बोलना है, बाद में फिर कैसे कैसे महापुरुष हुए, ये सब एक इतिहास बन गया। अभी के बच्चों को ये सब सुनाएंगे, बोले आप गप मारते, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोगों ने ऐसी चीजें देखी है तो कुछ तो रहेगा संस्कार। तो कहने का मतलब है पुत्र पुत्रो पुत्राहा, ये चलता है ना। किस प्रयोजन से बोला हमने ये? हाँ, तो उसमें जो आया है पुत्रेति तन्मयतया। यदि पुत्र वहां पर विसर्ग होता ना तो पुत्रेति नहीं बनता, फिर बनता पुत्र इति, ये ध्यान देना। तो पुत्रेति का मतलब वहां पर संबोधन किया है, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, हे मेरे बेटे। और सुखदेव जी के मन में जरा से भी कोई जवाब उधर से नहीं आया कि हां पिताजी हां पिताजी, बल्कि किसने जवाब दिया? तरवो अभिनेदु, तरुहु तरु तरवह, बहुवचन है, तरवह अभिनेदु, वृक्षों ने जवाब दिया, वृक्षों की तरफ से उत्तर मिला। उधर से क्या उत्तर मिला? वो तो जैसे कुएं के अंदर आवाज करो तो प्रतिध्वनित होकर के हमारी तरफ लौट के आती है, वैसे वृक्षों के अंदर से भी आवाज आई पुत्रेति पुत्रेति। व्यास जी बोलते मैं बोलता हूं मेरा बेटा है वो तो ठीक है, ये पेड़ हमें क्यों बोल रहे पुत्रेति पुत्रेति? वृक्षों ने ऐसा क्यों जवाब दिया? यदि सुखदेव जी का प्रतिनिधित्व किया वृक्षों ने, तो सुखदेव जी की ओर से यदि जवाब दिया वृक्षों ने तो क्या बोलना चाहिए? पिता इति पितु इति ऐसे बोल देते, ऐसा तो नहीं बोला, पुत्रेति पुत्रेति बोला। तो ऐसा जवाब क्यों दिया? बोले जिनको आज व्यास जी पुत्र बोल रहे हैं, किसी कल्प में किसी काल में व्यास जी भी सुखदेव जी के पुत्र हुए। दुनिया ऐसे तो चल रही है, आज हम किसी के बाप है कल वो हमारा बाप था, आज हम किसी के बेटा है कल हम उसका बाप बनेंगे। इस संसार का जो संबंध है ना, यही तो अनिर्वचनीय है। इसी अनिर्वचनीय बात को बताने के लिए हम थोड़ा ऐसी भूमिका बना रहे हैं। तो पुत्रेति तन्मयतया, तन्मयतया इतने उसमें तादात में भाव है कि जिनको व्यास जी पुत्र पुत्र बोल रहे हैं, उधर से वृक्षों ने सुखदेव जी का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तर दिया पुत्रेति पुत्रेति। जिनको तुम बेटा कर उनकी दृष्टि में तुम भी बेटा ही हो, अपने को बाप मत मानो, ये इसका उत्तर होता है। तो जो सुखदेव जी उस समय विरक्त होकर के चले गए, और वही सुखदेव जी परीक्षित के बिना बुलाए ही, जिस परीक्षित के मन में इस बात की ग्लानी है कि एक क्षत्रिय जो राजा का धर्म होता है, हमने अपने राजधर्म का उल्लंघन किया, हमें उस ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ये तब पश्चाताप होता है जब वह जरासंध वाला मुकुट उतार लेते हैं। जब तक सिर पर मुकुट था तब तक तो भूत सवार था कि इस ऋषि को पता है कि मैं राजा आया हूं इनके आश्रम में, प्यासा हूं जल चाहिए पीने के लिए, और जानबूझकर आंख मूंद के बैठ गए समाधि लगा रहे, ये ढोंगी है ऐसा हो नहीं सकता। और एक मरा हुआ मृत सर्प उनके गले में डालकर चले आते हैं। और उधर ऋषि कुमार, क्या नाम था, समीक, वो अपने बच्चों में जब खेल रहे थे, बोले मैं जीत गया। सब बोले तू क्या जीत गया, हमको जीत के तुम्हें क्या मिलेगा। अरे तुम्हारे अंदर इतनी जीतने की शक्ति है, तेरे पिता के गले में जिसने सांप डाला है ना, उसको कुछ सबक सिखा तब मैं मानू कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। अब उसको तो इतना बुरा लगा, मेरे पिता के साथ किसने ऐसा व्यवहार किया, उस राजा का इतनी हिम्मत कैसे हो गई, आज के सात बेदिन तक्षक आएगा उसको डस लेगा। अब ये बोलने के बाद जोर जोर से रोने लगा। अब कौन थे पिताजी, श्रृंगी ऋषि जी की अब आंखें खुली। वहां दर्शनकार बोलते हैं कि राजा ने इतनी आवाज दी तब तो समाधि नहीं खुली, और अपने पुत्र की आवाज सुनकर के समाधि खुल गई, ये कौन सी समाधि थी। लेकिन श्रृंगी ऋषि के मन में ना कोई राग है ना कोई द्वेष है, जैसे पता चला कि इसने राजा को श्राप दिया, कहा तुमने बचपना किया है, वह राजा इसके योग्य नहीं है, राजा के बिना अराजकता आती है, राजा हम सबके रक्षक हैं, राजा के बिना हम लोग न तप कर पाएंगे न समाधि लगा पाएंगे, ऐसे राजा को तुमने श्राप देकर के बहुत ही अनुचित कार्य किया। और फिर वहां खबर भिजवाते जो भी हुआ, वह राजा परीक्षित प्रायोपवेशन में बैठ जाते हैं कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई और मुझ जैसे क्षत्रियाधम के लिए यह भी थोड़ा ही दंड है, इससे भी बड़ा दंड मिलता तो वह भी मुझे स्वीकार है। ये सब तब बोलने लगे जब मुकुट उतार लिया तब, उससे पहले तो लगा जो भी मैंने किया वो ठीक ही है। तो जो परीक्षित प्रायोपवेशन में बैठते हैं, क्या सुखदेव जी को ही पता था कि हमें उसके लिए जाना है, वो तो ऐसे चले आए थे। क्यों आए थे, इसी टीका में भूमिका उपोद्घात में ऐसा लिखा है, भागवत का उदाहरण दिया कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये श्लोक आप लोग याद करो, भागवत का श्लोक बहुत सुंदर है। आत्मा रामाश्च मुनयो, अपने ही आत्मा में रमण करने वाले सुखदेव जी, विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी, शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है, इसलिए भागवत का नाम है एक दूसरा परमहंस संहिता। यस्मिन पारम हंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते। भागवत में कृष्णेति परमात्मेति, भगवान कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इस तत्व को सुखदेव जी ही बता सकते, और के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। दसवें स्कंद में जाते जाते तो परीक्षित बोलते हैं ना, अब तो मुझे कोई भूख सता रही है न कोई प्यास सता रही है, हमें तो आपके मुखारविंद से जो अमृत पान करने को मिल रहा है उसके सामने ये सामान्य क्षुधा प्यास क्या करेगी। मृत्यु सन्निकट है लेकिन अब तो अमरता को प्राप्त करने जा रहे हैं, हम लोग भी तो जी रहे दुनिया में। जितने भी सबसे पूछो किस लिए जी रहे, बोले बस 100 साल की आयु है जी रहे। तो यदि मरने के लिए जी रहे हैं तो ऐसा जीना तो पहले ही मरना हो गया ना। जो व्यक्ति मरण को स्वीकार करके जी रहा है वो जीना जीना है कि मरना है, मरना ही हुआ। जीना तो उसके लिए सार्थक है जो आगे अमर होने के लिए जीने की कोशिश कर रहा है। ये हम अपनी प्रशंसा नहीं करते लेकिन कुछ तो सावधानी बरत ही रहे ना। वो सावधानी क्या है, आजकल वो लोग बोलते हैं कि हम तो भाई परफॉर्मेंस को मानते हैं, पोजीशन को नहीं मानते। क्या परफॉर्मेंस मानते हैं, पोजीशन नहीं मानते। एक बार क्या हुआ, प्रसंग आगे ऐसे सुनाता हूं कि स्वर्ग लोक में दो आदमी ऐसे गए मरने के बाद, तो एक जो था यमराज ने पूछा, हां भाई तुम कौन हो, बोला मैं हरियाणा का जाट हूं। बोले अच्छा तुमने क्या किया? बोले मैं ड्राइवर था। अपने सेवक को बुलाया और कहा इसको सोने के महल में ठहराओ और सोने के वस्त्र आदि सब पहनने के लिए दो, पूरी मतलब वीआईपी व्यवस्था। मजाक की बात है लेकिन समझने की बात है। अब जो दूसरे वाले थे उनकी बारी आई, बोले भाई तुम कौन हो? बोले मैं बहुत बड़ा मूर्धन्य विद्वान पंडित था, तुमने क्या किया? बोले जीवन भर हमने सबको भगवान के बारे में बताया, उपदेश दिया, सेवक को आदेश दिया इसको पीछे झोपड़ी में ले जाओ वहां रख दो। बोले महाराज ये क्या हो रहा है, हमने सबको भगवान का उपदेश दिया, हमें झोपड़ी में हमारे लिए इतने सामान्य व्यवस्था और एक सामान्य ड्राइवर था उसको आप इतनी वीआईपी व्यवस्था दे रहे हो, ये क्यों? तो यमराज कहने लगे बात ये है कि आप जब उपदेश देते थे ना उस समय सब लोग सो जाते थे और ये हरियाणा रोडवेज वाला जब बस चलाता था तो सब लोग भगवान को याद करते थे, हे भगवान जैसे भी सुरक्षित जगह में पहुंच जाए। तो कहने का मतलब है वो परफॉर्मेंस था और ये पोजीशन था। अब आप लोग किसको मानोगे? यहां पोजीशन बनाने के लिए आए कि परफॉर्मेंस के लिए आए? जब सामने मौत नृत्य कर रही हो उस समय भगवान को हम कितनी याद करते हैं। सामान्य जीवन चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक है, हम बोल भी रहे होंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ लोग नुक्ताचीनी कर लेंगे, ऐसा बोलना चाहिए तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस समय लगता है कि अब प्राण निकला तब प्राण निकला, कभी आप बैठे नहीं होंगे, बैठ के देखना दिल्ली से हरिद्वार बीच कभी बैठ जाओ, उस बस का नाम ही है हरियाणा शक्ति और ऐसा नाच के चलाता है, आप उसमें नहीं भी बैठोगे चलाते भी देख लोगे ना, इतना खतरनाक ढंग से चलाते हैं, होता भी कुछ भी नहीं है लेकिन जो उसके अंदर बैठे हो तो भगवान को याद तो करते ही है। तो भगवान ने कहा इसने सबको भगवान याद दिला दिया इसलिए ये तो सोने के महल में रहने लायक है। और आप जब भगवान का उपदेश देने लगते थे तो सब लोग सो जाते थे, इसलिए उल्टा काम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मा रामास्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, जो सुखदेव जी व्यास जी के आवाज देने पर भी नहीं रुकते, वही व्यास जी अपने शिष्यों को जब भगवान के बारे में उपदेश देते, श्लोक रटने के लिए देते और धीरे धीरे वो आवाज जाती सुखदेव जी के कान तक, तब बोलते ये तो हमें भी चाहिए, हमको भी सीखना है, कहां ले जाते गुरुकुल में। अब व्यास जी बोलते आप जैसे विरक्त स्थिति में रहने वाले, परिव्राजक की स्थिति में रहने वाले गुरुकुल के नियमों का पालन कैसे करेंगे, यहां तो गुरुकुल के नियमानुसार चलना पड़ेगा। तो कुर्वंती अहेतु किम भक्तिम, भगवान का जो स्वरूप है आत्मा राम है, मुनि है, मनन करने की स्थिति में रहने वाले और निर्ग्रंथा, किसी भी प्रकार की जिनके अंदर ग्रंथि नहीं रह गई, गांठ नहीं रह गई, फिर भी उरुक्रम भगवान जो हरि हैं उनके ऐसे गुण हैं जिसमें बड़े से बड़ा क्यों न विरक्त भाव में रहने वाले महापुरुष हों वह भी उनके गुणगान किए बिना रह नहीं सकते। सुखदेव जी परीक्षित के सामने अपने आनंद के लिए आए कि भगवान का गुणानुवाद करेंगे, अपनी वाणी भी पवित्र होगी और परीक्षित का आत्मकल्याण हो रहा है। तभी तो परीक्षित ने भगवान को धन्यवाद दिया कि जिन्होंने गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की, आज उन्हीं की कृपा से आप जैसे महापुरुष जो एक गाय के दूहने में जितनी देर लगती उतनी देर तक आप जहां रुकते हैं, इससे ज्यादा ठहरते नहीं थे परिव्राजक रहने वाले सुखदेव जी, और आज 7 दिनों तक लगातार आप हमें कथा सुनाएंगे भगवान के गुणानुवाद, ये तो ऊपर वाले की कृपा से संभव होता है ना, हम लोगों के हाथ में क्या है, घर से चलने की इच्छा होती आ नहीं पाते, आ भी गए तो कोई बीच में बाधा आ सकती है, तो भगवत कृपा से ही ये सब संभव होता है। तो ये उपोद्घात में शुरू में लिखा है ऐसा कि वेदांत शास्त्र श्रवणालसानाम, ब्रह्मसूत्र आदि के पंक्ति पढ़ने लग जाओ, अध्यास भाष्य आदि कई बार लोग बोलते हैं महाराज इतना वेदांत हाई फाई हो जाता है, ऊपर ऊपर वो जाने लगता है, ऊपर ऊपर जावे वो भी ठीक नहीं, हमारे अंदर आना चाहिए। पहले श्लोक के माध्यम से तत्त्वम पदार्थ का विवेचन किया जाएगा। तत्त्वमसी जो महावाक्य है, तत्त्वमसी महावाक्य में जो दोनों विरोधी अंश है, जिसको हम बोलते हैं जहत, जहत का मतलब होता है त्यागना और अजहत का मतलब होता है नहीं त्यागना, रखना, कुछ हिस्से को रखना और कुछ को छोड़ देना, इसी को बोलते हैं जहद अजहद लक्षणा, इसी को बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा। तत्त्वमसी महावाक्य के द्वारा जिस शुद्ध परमात्मा का जो प्रतिपादन किया जाता है, इसको बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा के द्वारा शुद्ध परमात्मा का प्रतिपादन। दोनों याद रहेगा ना, भाग त्याग लक्षणा और जहद अजहद लक्षणा। इसमें विरुद्धांश क्या है? अच्छा, तत्त्वमसी महावाक्य का नाम है स्मरणात्मक महावाक्य, स्मरण कराते हैं, याद दिलाते हैं, लेकिन कहा स्मरणम अनुभवायत्तम, जो भी स्मरण होता है वह अनुभव के अधीन होता है।